इतना उपभोक्त है। क्या हम लोग कभी संसार को भूल पाते हैं? कहलाने के लिए तो बहुत भक्त कहलाते हैं बहुत प्रेमी, लेकिन अभी तो देह घर आदि का ही स्मरण चल रहा है, भगवान का स्मरण कहां होता है? और भगवान के लिए क्या छोड़े? उधर तो जीवन का प्रश्न था कि राजा सुनेगा कि हमारा अंगराग इसने कृष्ण नामक पुरुष को दे दिया तो क्या करेगा, कोई ठिकाना नहीं, निश्चित जान मार देगा। लेकिन उसको इसकी चिंता नहीं रही, न्योछावर हो गई। इसके पीछे क्या कारण था? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, रूप पेशल माधुर्य हसितालाप दीक्षित ही धर्षितात्मा ददौ सान्द्रम उभयोरनुलेपनम। छह कारण थे कृष्ण में उसका चित मोहित हो गया। एक तो कृष्ण का रूप है, रूप का अर्थ होता है अंग सौष्ठव। अभी संस्कृत का अर्थ संस्कृत में किया जा रहा है तो कोई कोई सोच सकते हैं तो फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। अंग सौष्ठव सुष्ठु शब्द है संस्कृत में, और उसके संगत सौष्ठव का है। अंगों की बनावट भगवान की बिल्कुल एज इट इज थी, जितना सुंदर होना चाहिए किसी पुरुष को, टॉप सीमा की सुंदरता वो भगवान में है। भगवान को जब देखते थे लोग तो यही कहते थे कि विधाता के पास सुंदर पुरुष बनाने की जितनी कला है सब कृष्ण में खर्च हो गई, अब उसको बनाने की कला नहीं है, रह गई, कृष्ण ने ही सारी कला लगा दिया। यही कहते थे लोग, भगवान इतना सुंदर, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते इस प्राकृतिक मन से उनकी सुंदरता की। तो पहली बात थी कि उनके अंग के सुंदरता पर मोहित हो गए, मोहित चित्त हो गए, उसका चित्त बिल्कुल भगवान में लग गया। और दूसरा कारण था पेशलम। पेशल का अर्थ होता है सुकुमारता, शरीर की कांति और सुकुमारता। भगवान बिल्कुल किशोर अवस्था में प्रवेश कर रहे थे, सुकुमार परम सुंदर। एक कवि ने तो कहा है कि भगवान तीन जगह से, कृष्ण तीन जगह से क्यों झुक जाते हैं, इसलिए कि उन पर सुंदरता का इतना वजन है कि उसको सह नहीं पाते, इसलिए झुक करके चलते हैं। किसी मनुष्य के सिर पर आप बोझ लाद दीजिए तो होश में नहीं रहे, वो ठीक से नहीं चलेगा, इसके पैर डगमग करेंगे, वो तीन जगह से टेढ़ा होगा। तो भगवान पर ब्यूटी का, सुंदरता का इतना बड़ा भार है कि वे उसको सह नहीं पाते हैं, सुंदरता के भार से तीन जगह से टेढ़े। तो सुकुमारता, सुकुमार, कुमार शब्द में सु शब्द लगाना, अतिशय कोमल, अतिशय सुंदर। रूप पेशल और माधुर्य, माधुर्य का अर्थ है रसिकता, मधुर है रसिकता। रसिकता से है तात्पर्य है कि उस स्त्री को देखते ही उसके पास आ गए, बातचीत करने लगे, बड़ा सुंदर रसिक स्वभाव, रसिकता, रस आ रहा था उनको देखने में, उनके साथ बात करने में। और तीसरा चौथा कारण था हसीता, उनकी हंसी। पांचवा कारण आलाप, उनकी बात। और छठा कारण था विक्षिप्त, उनका देखना। भगवान की सुंदरता, सुकुमारता, रसिकता, उनका हास्य और उनकी बात और उनकी चितवन, इन छह से धर्षित आत्मा, उसकी आत्मा, उसका मन बिल्कुल मोहित हो गया और उसने वो अंगराग भगवान को दे दिया। कोई छिप करके एकांत में नहीं, मथुरा के राजपथ पर यह कह करके कि ये कंस का है लेकिन अब आपको दे रहे, आप ही इसके योग्य। यह कह करके कुब्जा ने भगवान को दिया चंदन। विचार कीजिए आप लोग भक्त हैं कुब्जा के भक्ति पर। जब तक भागवत हम लोग इस तरह से नहीं सुनेंगे तब तक पता भी नहीं चलेगा कृष्ण से कौन कौन प्रेम किए, कितना प्रेम किए। मथुरा के राजपथ पर कंस के लिए अंगराग ले जा रहे थे कुब्जा और उसने भगवान को दे दिया, यह बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़े बड़ा त्याग है वास्तव। तब आगे सुखदेव स्वामी कहते हैं कैसे दिया उसने अंगराग भगवान को। ततस्तावंगरागेण स्ववर्णे तरसोभिना संप्राप्त परभागेन सुशुभातेनुरंजितौ। कुब्जा भी एक अद्भुत ढंग से अंगराग लगाई, वो कृष्ण को अंगराग दी का मतलब उनको नहीं दी लगाने के लिए। भगवान ऊपर पीताम्बर धारण किए हुए थे, उसको थोड़ा हटा करके नाभि से ऊपर पूरे बांह में, छाती में और मुख में बहुत ही सुंदर चित्रकारी पूर्वक और लगाने लगी पेस्ट अंगराग। जिन भगवान के अंगों का ध्यान भी नहीं आ पाता है ब्रह्मा शिवादि के चित्त में, और उसी अंग को कुब्जा छू रही, भगवान के गाल को, बांह को, हाथ को, अधर को वो छू करके और उसमें ऐसे चित्रकारी बना रही, लेप कर रही, बहुत सुंदर चमकने वाला वो अंगराग था। तो श्री कृष्ण पर उसने पीले वर्ण का अंगराग लगाया, पीत वर्ण का, और श्री बलराम जी पर सांवला लगाया। तो उस समय स्ववर्णेतर शोभिनौ, अपने वर्ण से भिन्न लग रहे थे। बलराम जी सांवले लगने लगे और भगवान गोरा लगने लगे। कुब्जा ने जान बुझकर ऐसा किया ऐसा पेंट किया चंदन का, चंदन यात्रा, कि कृष्ण गोरे लगने लगे और गोरे बलराम जी पर सांवला अंगराग लगाया तो सांवले लगने लगे। वो सब रंग रखी हुई थी अपने पास, तत्काल ही मिलाया और तैयार करके, और कभी अपने अंगुली से चित्रकारी कर अंगुली से लगाई, और कहीं भगवान के गाल पर और ललाट पर जब चित्र बनाना हुआ तो तुलिका ले करके और पीछे से उनका उनका सिर पकड़ करके ऐसे कर रहे थे, लगा रहे थे। अभी तो ये बच्चे हैं 11 वर्ष के, इसलिए उसने अच्छा से पकड़ा भगवान, और भगवान भी ऐसे सीधे साधे खड़े हो गए और बलराम जो और सब तमाशा देख रहे थे, सारा नगर जान गया कि कुब्जा कृष्ण और बलराम को अंगराग लगा रहे। सब लोग देख रहे थे, स्त्रियां देख रही थी भवनों से, पुरुष सब खड़े होकर के देख रहे थे। और उसने नाभि से ऊपर संप्राप्त पर भाग है ना, पर भाग करते ऊपर के भाग में लगाया चंदन, तो सुशुभाते नुरंजित, उस चंदन से अंगराग से कृष्ण और बलराम बहुत सुंदर लग रहे थे। इधर तो हम लोग चंदन लगाते हैं तो चंदन ही ऐसा होता है गोबर जैसा कि वो कोई सुंदर लगता नहीं, लेकिन वो जो चंदन पीसी थी तो उसमें कहीं भी उभर खाबड़ नहीं लग सकता था, समान रूप से और सांद्रम गाढ़ा लेप किया और बिल्कुल समान रूप से। जब चंदन लगाने में कहीं उंगली से ज्यादा दब जाता है, कहीं कम चंदन रहता है, कहीं ज्यादा रहता है, वो चिकना नहीं हो पाता, लेकिन उसके पीसने में ऐसी कला थी वो बिल्कुल समान रूप से लगाई। ओहो, उस समय रहा होता वीडियो कैमरा तो भगवान की उस छवि को और शैलेंद्री किस तरह से सेवा कर रही है भगवान को, सब लीलाएं आ गई। लेकिन सब अच्छा दृश्य जब समाप्त हो गया तब तो ब्रह्मा ये सब वीडियो कैमरा बनाया। नहीं देखने लायक लोग जब रह गए दुनिया में तब बनाया। वैसे यह वीडियो कैमरा भगवान को नहीं पकड़ सकता, वो स्पिरिचुअल है या मैटेरियल है, लेकिन भक्तों को चाहिए कि वे अपने मन के कैमरा से भगवान की उस छवि को देखा करें। बाजार में राजपथ पर दोनों भाई खड़े हैं और दोनों को बड़े मनोयोग के साथ अंगराग लगा रही थी और बहुत देर से लगाई। श्री कृष्ण कभी कभी कहते थे हो गया, नहीं नहीं अभी बाकी रह गया, इधर उधर खूब लगाए, से भगवान की उंगुलियों को पकड़ी होगी और भगवान के ललाट गाल अधर सब जगह लगाई। देखिए कुब्जा का सौभाग्य, ये है प्रेम भगवान से। और वो भूल गई, उसको कोई चिंता नहीं थी कि मैं मथुरा की हूं, कंस की दासी हूं, ये हूं वो, सब आइडेंटिटी भूल गई, सेवा करने लगी। मैं इस कथा को खटिया में 3 घंटा तक कहा तो कुछ भक्त कहे कि हम नहीं जानते थे कि ये कथा भी इतनी देर तक चलेगी, 12 श्लोक की कथा है और लीला है, सिद्धांत कुछ नहीं है तो इतनी देर तक कथा चलेगी। अरे इस कथा को 3 साल कहा जा सकता है यदि कहने वाले सुखदेव गोस्वामी जैसे हों। केवल इसी का वर्णन किया जाए कि उसकी तुलिका किस तरह से भगवान के गाल पर ललाट पर घूम रही है और कैसे निशान बना रही है कई प्रकार का, और भगवान बिल्कुल उसकी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। वैसा नहीं कहे नहीं दे दो हम लगा लेंगे, तुम क्या लगाओगे, वो लगा रही है। जिन भक्तों को यह अवसर मिलता है भगवान की सेवा का मंदिर में, वास्तव में बड़े भाग्यशाली है। तो भगवान को के श्रृंगार का, उनको सजाने का, बांसुरी धराने का, मोरपंख धराने का अवसर मिलता है, ये बहुत बड़ा भाग्य है। अभी से भगवत सेवा का और संबंध का अभ्यास चालू हो जाता है। अंततः भगवान एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति है, वो निराकार नहीं है। निराकार वाले क्या चंदन लगाएंगे बताइए। तो भगवान इस तरह से स्वीकार कर रहे हैं और बिल्कुल गोरा लड़का लगने लगे पूर्ण रूप से, और नीचे वस्त्र पहने ही थे लंबा और ऊपर सब चंदन भर गया था, तो लगता था बिल्कुल कि यही बलराम जी है। और बलराम जी कृष्ण बन गए, स्ववर्णेतर शोभिना अंगरागेण, अपने वर्ण से भिन्न अंगराग लगा करके बहुत शोभित होने लगे। जब भगवान अंगराग लगा लिए तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, प्रसन्नो भगवान कुब्जाम त्रिवक्राम रुचिराननाम। प्रसन्नो भगवान समस्त ऐश्वर्य के अधिपति, सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान प्रसन्न हो गए। किस चीज से? चंदन से नहीं, कुब्जा के भाव से प्रसन्न हो, उसके त्याग से प्रसन्न हो, पूर्ण सेटिस्फाइड हो गए भगवान। और तब उन्होंने लोक में अपनी भक्ति का, अपने दर्शन का क्या फल होता है इसको तत्काल दिखाने की इच्छा की, तत्काल दिखाऊं। जो उन्होंने कहा था कि तुम्हारा कल्याण होगा, अंगराग दोगी तुम्हारा कल्याण होगा, तो भगवान उसको दिखाना चाहते थे। सुखदेव गोस्वामी पुनः त्रिवक्राम रुचिराननाम कह रहे हैं, रुचिराननाम, और वहां बरानना कहे थे। वास्तव में उसका मुख बहुत सुंदर था, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी बारम्बार रुचिराननाम बरानना कह रहे हैं, श्रेष्ठ मुख वाली, रुचिर मुख वाली कुब्जा और त्रिवक्रा। रिज्विन कर तुम मनस्चक्र दर्शन दर्शन फलम, भगवान ने सोचा कि तुरंत इसको सीधा करना चाहिए, रिजू सो परम सुंदरी बना दूंगा। अब देखिए भगवत्ता, यहां तो पहले तो ये हो रहा था कि भगवान मांगे उससे चंदन, लेकिन चंदन ले करके क्या किए, भगवान अपने मन में तुरंत सोच लिए कि अपने दर्शन का फल दिखाना है लोग को, इसको देना है, लोग देखें कि हमारे दर्शन का सेवा का क्या फल होता है। वे कुब्जा के दोनों पैर पर अपना दोनों पादाग्र रख उसको सीधा करने के लिए, बिल्कुल कुबड़ आदि दूर करने के लिए, उसकी कुरूपता दूर करने के लिए। ध्यान से इन बातों को सुनना चाहिए। भगवान अपने दोनों चरण के अग्रभाग को कुब्जा के चरण के ऊपर रख रहे हैं, दोनों पादाग्र को उसके पादाग्र पर अर्पित कर रहे। भगवान के परम सुंदर लाल लाल चरण के तलवे और अंगुली का अगला भाग कुब्जा के पैर पर दोनों रख और अपने दोनों अंगुलियों को उसके चिबुक पर, कि चिबुक इसको कहते हैं, ऐसे दोनों अंगुलियों को ऐसे किए और पीछे से ऐसे पकड़े और थोड़ा सा ऐसे लगाए जोर, और इसके बाद फर्स्ट क्लास की स्त्री हो गई और कुबर सुबर सब चला गया। लगता था कि लक्ष्मी जी अवतरित हो गई। क्या कोई है डॉक्टर ऐसा इस जगत में, कोई कर सकता है? आजकल तो लोगों का पेट भारी क्या क्या, तो योगा वाले कहते हैं कि हम तुमको हल्का कर देंगे, जो ठिगना है उसको ऊंचा कर देंगे, लंबा कर देंगे, ऐसे कहते हैं ना, लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं, वो सब केवल कहने की बातें होती हैं। भगवान अपने अंगुली से पकड़ करके और तान दिए। सुदेव गोस्वामी कहते हैं पदभ्याम आक्रम में प्रपदे द्वयंगुल्युत्तान पाणिना प्रगृह्य चुबके ध्यात्म उदर नी नमद अच्युत। अपने दोनों पैर से उसके पैर को दबाए और अपने पाणी के उत्तान अंगुली से उत्तान पाणी के दो अंगुली से उसके अध्यात्म को ऊपर खींचे। अध्यात्म का अर्थ होता है शरीर, देह जिसमें आत्मा रहता है, शरीर को भगवान ने ऐसे खींचा। उसी समय सात तदर्ज समानांगी बृहद छोणी पयोधरा मुकुंद स्पर्शनाथ सद्यो बभुव प्रमदोत्तम। उसी समय उसका शरीर बिल्कुल सीधा हो गया, रिजु हो गया और समानांग वाले और उसके श्रोणी कहते कमर से नीचे का भाग, श्रोणी बड़े बड़े और बड़े बड़े अस्तन हो गए। क्यों मुकुंद स्पर्शनाथ, क्या विशेषता है? मुकुंद के स्पर्श से, श्री कृष्ण के छूने से ही उसका शरीर ऐसा हो गया। बभुव प्रमदोत्तमा, प्रमदोत्तमा स्त्रियों में सबसे श्रेष्ठ स्त्री हो गई। देखिए भगवान का यह चमत्कार। वास्तव मथुरा में यह कथा फैली होगी कि कृष्ण नामक एक लड़का आया है और कुब्जा को बिल्कुल ठीक कर दिया, तो कितना प्रभाव फैलता होगा। कृष्ण को लोग देखने आते होंगे, कैसा लड़का है, कैसा है, क्या है, कैसा है। बहुत भीड़ लगी रहती थी, लोगों को हटाना पड़ता था कि अब कृष्ण को खाने दो, पीने दो, कितना देर देखते रहोगे। इतना सुंदर है और प्रभावशाली है, ये है भगवत्ता भगवान की। तो चंदन मांगे, अंगराग मांगे, तो वास्तव में भगवान को कोई अभाव नहीं है। वो तो दिखाना चाहते थे कि हमारे दर्शन का ये फल होता है सेवा का, तो तत्काल सीधा किए। यहां पर एक भक्त कहते हैं इस दो घटना पर, एक धोबी था मथुरा में जिसका शरीर ठीक करना, तो दूर की बात रही, जो शरीर था उसको भी भगवान ने बर्बाद कर दिया, और वही एक शरीर खराब है उसको अच्छा कर दिया। ये घटनाएं तो फैली ही होंगी, और आप जरा विचार कीजिए, एक व्यक्ति को भगवान ने मार दिया, शरीर समाप्त कर दिया, और दूसरे के शरीर को बहुत अच्छा कर दिया, क्या इसमें भगवान कारण है? नहीं, भगवान कारण नहीं है। एक भक्त कहते हैं, निस्स्यास्त निसर्गतः किमपि वा रागादिकं जीववत्। जैसे जीव में राग और द्वेष होता है, वैसे भगवान में किसी के प्रति राग नहीं है न द्वेष है। किंतु स्वीय जनाव नाय भवति स्वेच्छयेच्छा सतः। लेकिन भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार इच्छा करते हैं। यह स्पष्ट हो गया इस दिव्य लीला में कि जब कुब्जा ने रुचिरांग भगवान को दिया तो भगवान ने उसे रुचिर अंग दिया, लेकिन जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता है, भगवान का तिरस्कार करता है, तो वह अपने ही कर्म से मरता है, दुखी होता है। ये नहीं समझना चाहिए भगवान में विषमता है। धोबी का वध भगवान ने कर दिया तो वास्तव में उसके कर्मों का फल था, और कुब्जा ने बहुत सुंदर शरीर पाया तो ये इसके कर्म का फल था, उसने भगवान का स्वागत किया। वही भगवान उसी मथुरा में और कंस के सेवक से ही कपड़ा मांगे थे, और वो कहा कि जल्दी भाग जाओ, नाम मत लो कपड़े का, नहीं तो कंस मार देगा, ये करेगा वो करेगा ये करेगा, अभी खबर दे दूंगा। और यह बेचारी कुब्जा, जिसे भगवान ने मांगा तो अपने हाथ से उसने सारा लगा दिया अंगराग, तो उसके कारण वह गति मिली उसको, उसको वह फल प्राप्त हुआ, और धोबी को अपना फल प्राप्त हुआ। अच्छा, अब एक लीला में बात कही गई कि भगवान ने अपने चरण से उसके चरण को दबाया, इसका क्या भाव है? तो इस पर भक्त कहते हैं कि पाद संपीडनम शूद्र धर्म इत्याकलय सह तदा तत्प्रपदे पद्भ्याम माधव किम पीडयत। चरण सेवा करना शूद्र का धर्म है, तो भगवान ने सोचा कि हमारा चरण जो है वो शूद्र है, तो इसको सेवा में लगाना चाहिए, इसने हमें अंगराग दिया है तो इसकी सेवा में इसको लगाना चाहिए। पद्भ्याम शूद्रो भेजायत, भगवान के चरण कमल से शूद्र की उत्पत्ति हुई, भगवान से ही सबकी उत्पत्ति हुई है वास्तव में। तो भगवान ने सोचा कि शूद्र का धर्म है चरण सेवा करना, और इसने मेरी सेवा की है तो प्रतिदान करना है, तो अपने चरणों को लगा दिया सेवा में, अपने चरण से ही उसके चरण को दबा रहे थे, दबाए। और फिर भगवान ने सोचा कि इसने अपना सारा अंगराग हमें दे दिया, थोड़ा भी बाकी नहीं रखा, तो मैं भी इसे सारी भूमि दे दूंगा, मेरे पास जो कुछ भी है सब कुछ दे दूंगा। सकल भूमि समर्पण समय फलतया प्रतिमूल्य मिवोचितम प्रभु धात पाद पाद जुगार पर। पाद का अर्थ होता है चौथाई संस्कृत में, चौथा अंश को पाद कहते हैं। तो इसके पास तो आधा था ही, उसके पास पादद्वय था, आधा था, तो भगवान ने अपना आधा दिया, चौथाई चौथाई पैर। तो इसके द्वारा भगवान यह सिद्ध कर रहे हैं कि मैं तुमको पूरी भूमि दे रहा हूं, सब कुछ समर्पित कर रहा हूं। और एक भक्त कहते हैं कि भगवान उसके चरण को दबाए, तो इसमें भगवान का आशय ये भी हो सकता है कि भगवान ने ये देख लिए कि उसके चरण में ही कामदेव की उस दिन स्थिति है, तो उसके काम वेग को बढ़ाने के लिए भगवान ने चरण दबाया, ऐसा हो सकता है। और दूसरा भाव लिखते हैं कि जो अधो गति में चलता हो, नीचे चलता हो, उसको दंडित करना चाहिए, और जो ऊपर चलता है उसको पुरस्कार देना चाहिए। तो ये चरण हमेशा अधोगति में चलता है, मतलब नीचे चलता है, इसलिए भगवान ने उसको पीड़ित किया, दबाया चरण को। जो लोग अधोगामी होते हैं मतलब बुरा कर्म करते हैं, नीचे चलते हैं, नीचे चलने का मतलब यहाँ भूमि पर चलने से है या बुरा कर्म करने से, तो जो अधो जिनकी अधोगति है तो उनको भगवान दंड देते हैं, चरण से मारते हैं, और जो ऊपर चलते हैं अच्छा कर्म करते हैं उनको उंगली से हाथ से सहारा देते हैं। तो ऊपर रहने वाले अंग को उंगली से छुए और नीचे चलने वाले चरण को अपने चरण से दबाए, तो शायद हो सकता है भगवान का आशय हो, दिखा रहे हो। अधो गतेर और दनमे व पदभ्याम अनुग्रहम शोध गते करेण करोमि भूमा वितिबोधयम सब द्वाभ्याम द्वयम तत्किमधा सलीलम। अब देखिए कंस के दोनों सेवक हैं कुब्जा और रजक, वो भी कंस के पास कपड़ा ले जा रहा है, आखिर कपड़ा ले नहीं पाया, कृष्ण ले लिए वस्त्र लेकिन उसको मार कर लिए, कृष्ण तो ऐसे भी ले लेंगे, मृत्यु सर्वहरस चाह। जो लोग प्रेम से भगवान को नहीं देते हैं तो अंत में तो भगवान मार करके सब ले ही लेते हैं, मर करके छोड़ करके चला ही जाना पड़ेगा, सब गट्ठर छोड़कर जाना पड़ेगा, वही मथुरा के राजपथ पर ही वो गट्ठर सब रह गए, धोबी चला गया। जिस दिन मरेंगे तो घर द्वार बैंक सब तो यहीं रह जाएगा, वो अभी लेना ही हुआ। भगवान कहते मृत्यु सर्व हरस चाह, मैं सब कुछ हर लेने वाला मृत्यु, मृत्यु के समय सब कुछ हर लिया जाता है, कुछ भी बाकी नहीं रहता, ये देह भी यही छीन लिया जाता है और की तो बात दूर। सर्व हर मनुष्य के पास जीव के पास जो कुछ भी रहता है मृत्यु के समय सब छीन लिया जाता है, बस अकेले जीव जाओ दूसरा शरीर दिया जाएगा, यहां से एक रत्ति भर भी सामान नहीं ले जा सकता, सर्व हर भगवान कहो। आखिर धोबी का भी सब कुछ चला गया लेकिन वो गया किस रीति से और कुब्जा ने अपना दिया किस तरह से। कंस सैव तदम्ब राणी, कंस के ही वो अंबर थे, कपड़े थे, रजको ढान जिसको रजक ढोकर ले जा रहा था वो भी कंस के ही कपड़े थे। और अंग रागो अपियम तुल्यो तत्परिचार कावत जुआम तुल्यो हमर्थी दो। भगवान कहते हैं कुब्जा से, उसके चिबुक को पकड़ कर कहते हैं, उसके ठोड़ी को पकड़ करके भगवान ऐसा कहते हैं मानो कि देखो वो वस्त्र भी कंस के थे जो रजक ढो करके ले जा रहा था, और अंगराग भी कंस के लिए था, और तुम दोनों कंस के सेवक, और मैं भी वही से समान अर्थी, मांगने वाला भी मैं वही रहा, लेकिन तत्र सिद्ध सुदुरुक्ति रत्र भवति सर्वांग राग प्रदा, लेकिन वो दुरुक्ति बोला, वो कठोर वचन बोला, और तुम वही कंस की सेविका हो करके सर्वांग राग प्रदा, तुम मेरे अंगों पर अंगराग दी हो, सारल यम तय सिद्ध ने चिव को धरते आस संसा चुता, धन्य हो तुम। उसके चिवों को पकड़कर मानो कृष्ण उसकी सराहना कर रहे हैं, तुम कितनी अच्छे हो और वो कितना खल था। आखिर दोनों कंस के सेवक और दोनों वस्तुएं कंस के लिए जा रही थी, लेकिन तुम्हारा कितना हृदय अच्छा है, तुमने मधुर वचन दिया अंगराग दिया और वो कठोर बोला तो वो गया दुनिया से। भगवान मानो कहते हैं उसका चिबुक पकड़ कर, तो मानो भगवान ये कहते हैं कि हो सकता है उसके मन में भय हो, कभी कुब्जा कह सकती है कि त्वद रूप मोहित धिया ही मयांग राग। यहां पर भाव व्यक्त किया जा रहा है कि भगवान है कुब्जा के चिबुक को क्यों पकड़ रहे हैं, बिल्कुल सटे हैं सामने और अपने परम सुंदर अंगुली से उसके चिबुक को पकड़े हुए हैं, तो क्या भाव है भगवान का। एक भाव कहते हैं हरिश्वर जी, तद रूप मोहित धिया ही मयांग रागस तुभ्यम हृदय निखिलो पि तदे दाग। भगवान कहते हे प्रिय, तुम ये मत सोचो कि तुम मेरे रूप पर मोहित होकर के मेरे लिए अंगराग दे दी हो, तो तुमने कंस का बहुत अपना बड़ा अपराध किया है। तो पता नहीं ज्ञात्वा करिष्यति नृपः किं, क्या राजा करेगा, तुम डरना मत। भीति न आवह इति अभयदस चिबुकम दधौ किं, भगवान ने चिबुक पकड़ कर कहा कि डर मत करना, मैं हूं, तुमने कंस का अंगराग मुझे दे दिया तो कभी चित्त में भय मत करना। भीति मा आवह, भीति मत मन में लाओ, डर मत करो। शायद यह आश्वासन देने के लिए भगवान ऐसा कह रहे हैं। और एक भाव भक्त कह रहे हैं कि भगवान ये कहते हैं कि पहले जब मैं शत्रु के नगर में गया था लंका में, तो मैंने हनुमान का आश्रय लिया था, इस नगर में भी पहले हनुमान का आश्रय लेना चाहिए। शायद भगवान इसीलिए हनु पकड़े, इसको हनु भी कहते हैं, हनुमत चिबुक को हनु इसको कहते हैं और इसको चिबुक को हनुमत कहते हैं। तो शायद भगवान ने सोचा कि भाई उस समय लंका में गया था तो हनुमान का आश्रय लिया था, तो यहां भी शत्रु के नगर में आए हो तो थोड़ा हनुमान का आश्रय लेना चाहिए, इसलिए हनु पकड़े। एक से एक भाव भक्त लोग लिखा करते हैं। दूसरा भाव बता रहे हैं, द्रष्टुम वास स्रगा भरण चंदन धारणेन किद्रिं नवीन मति सौष्ठवम आगतम में द्रष्टुम तदास मुकुरे विमलेब्ज शोभे तदमूल दंड चिमुकम करतो दधौ किम। जब भगवान खड़े हैं कुब्जा के परम सुंदर मुख के पास, तो कुब्जा का मुख तो शीशा की तरह चमक रहा था, इतना सुंदर लग रहा है। तो इस पर भाव लिखते हैं कि भगवान को वस्त्र मिला था नया है मथुरा में आने पर, दर्जी ने सी करके पहनाया था अच्छा से, वास वस्त्र और श्रक माला मिली थी और आभरण अलंकार, और इसके बाद चंदन धारणे नाम फिर चंदन धारण किए थे। तो भगवान के मन में इच्छा हो रही थी कि देखूं कि किद्री नवीन मति सौष्ठव आगतम में, मैं कितना अच्छा लग रहा हूं, जरा दर्पण में देखना चाहिए। तो क्या भगवान कुब्जा के मुख रूपी दर्पण में अपनी शोभा देख रहे थे? कुब्जा का मुख ही मुकुर है, मिरर है, क्या भगवान उसमें अपने को देख रहे थे कैसा चंदन है कैसा श्रृंगार है? हो सकता है भगवान इसीलिए खड़े होंगे उसके मुख के सामने। कितना सुंदर भाव भक्त व्यक्त कर रहे हैं, वास्तव में चाहे जो कुछ भी हो कृष्ण के मन में बात न आई हो लेकिन उस भक्त के हृदय में बात आ रही है, यह अद्भुत बात। तदास से मुकुरे, उसके आस से मुकुर में, उसके मुख मुकुर में जो विमल है अब्ज शोभ है, जो कमल से भी अधिक सुंदर था, विमल था, तो क्या उस शीशा में मिरर में अपना अपनी छवि देखने के लिए भगवान उसके मूल दंड को पकड़े, तन मूल दंड चिबकम करतो दधारा। जैसे हम लोग तिलक करते हैं तो मिरर के मूल दंड को नीचे के अंश को पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं ना, उस दंड जैसा नीचे निकला रहता है। तो भगवान क्या उसके मुख को सीधा करके मिरर जैसा पकड़कर अपने को देख रहे थे? देखने के लिए ही वो पकड़े थे ऐसा लगता है भक्त कहते। क्योंकि उनको कपड़ा मिला था, नया श्रृंगार मिला था, तो देखने की लालसा तो होगी ही कि मैं कैसा लग रहा हूं। तो कुब्जा के मुख मिरर में, मुख दर्पण में अपने को देख रहे थे, ये बहुत सुंदर भाव है। इसी को लीला वर्णन कहते हैं वास्तव में, नहीं तो कहने के लिए तो कहा जा सकता है कि हाँ खूब जाने चंदन दिया कृष्ण लिए, इसके बाद चले गए, उसको सीधा करके हो गया, दो चार सेकंड में कथा पूरी हो गई। भगवान क्यों चिबुक पकड़े, कैसे खड़े हैं उसके बिल्कुल निकट। अब फिर क्या भाव है, भगवान चिबुक पकड़े हैं तो उसको आश्वासन दे रहे हैं कुब्जा को, कहते हैं जत प्राक चकार भवती वनवास दानम जो तुमने मेरे पूर्व जन्म में जब मैं श्री राम के रूप में आया था तो तुमने मुझे वनवास दिया था। जत प्राक चकार भवती वनवास दानम मह्यम मयात गणितम भृषमिष्ट कृतम। लेकिन तुमने मुझे वनवास दिया कैकेयी को बहका कर, लेकिन वो वनवास मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ है, मैं उसको पसंद किया। प्राग्भुक्त वन्य बसते नममा धुना तो देयम मुदेत सदैव शिवकम धारा। तुम चिंता मत करो, पहले जो वनवास मिला था उससे मुझको कोई दुख नहीं हुआ, तुमने बहुत अच्छा किया। शायद इसी को बताने के लिए भगवान उसके चिबुक को पकड़ रहे थे। अरे तुमने, तुम्हारा कोई दोष नहीं था, बहुत अच्छा हुआ तुमने मुझे वन में भेज दिया। हाँ, ये कहने के लिए भगवान कह रहे हैं, ऐसा पकड़ते हैं। रसापहरणम पुराकृत मनागसस्य प्रभो मया कुटिलया फलम तदुपभुज्यतस्य स्फुटम विधाय सुरसार्पणम पुनरना मया श्यामिति हृदय स्थितम अवेदते चिबुकम में तदर्थम दधे। एक भाव है भगवान क्यों चिबुक पकड़े हैं, तो भगवान ये कह रहे हैं कि तुमने पूर्व जन्म में मैं जब राम रूप में था तो तुमने रसापहरण किया था। रस्सा का अर्थ होता है पृथ्वी और अपहरण का अर्थ है छीनना। पृथ्वी छीनने का मतलब है कि मुझे राजा नहीं बनने दिया, वन में भेज दिया, तो तुमने रस्सा अपहरण किया था। इस कारण से मतलब वो कुब्जा सोच रही है कि मैंने पूर्व जन्म में रस्सा अपहरण किया था राम से, और इसीलिए विधाता ने हमें ये फल दिया, कुटिल बनी। लेकिन अब मैं आपको सूरस अर्पण कर रही हूं, रस अर्पण कर रही हूं, चंदन। रस को छीना था उस बार, रसा को छीना था इस बार रस दे रही हूं, तो हमको अनामय कीजिए, हमको अच्छा बना दीजिए। भगवान शायद उसके इस भाव का स्वागत करते हुए कहते हैं ठीक है, चिंता मत करो, उस बार तुमने रसापहरण किया था तो इस बार रसार्पण किया है तो सब पूरा हो गया, कोई बात नहीं, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। ये सब है भाव संस्कृत के शब्दों में निहित है, और जिनको थोड़ा थोड़ा संस्कृत का ज्ञान है वे इसका आस्वादन कर सकते हैं। रसार्पण और रसापहरण इस पर कह रहे हैं। चंदन के पेस्ट को रस कहा गया है बारंबार भागवत में, तो रसार्पण कर रहे हैं, और पिछले जन्म में इसने रसा का अपहरण किया था, भगवान को पृथ्वी का अधिकारी नहीं होने दिया। तो भगवान ने अपने हाथ को कुब्जा के मुख पर ले गए हैं, चिबुक पर। तो चिबुक पर ले जाने का मतलब उसके मुख को पकड़े, तो इसके बाद वो बहुत सुंदरी हो गए, तो उसके मुख का भगवान ने स्पर्श किया, के केशों को सहलाया, श्रृंगार जैसा किया। तो इस पर हरिश्वर जी कहते हैं कराम बुजम जन पुरावलंबितम श्रीयो गजेन्द्र सचसो यमुज्ज्वल मुखाम बुजम कांक्षपिते समुत्सुक करो ममत्याशयस तथा दधे। भगवान कहते हैं कि मेरे ये हाथ पहले श्री को पकड़े थे, श्री के हाथ को पकड़े थे, श्री करग्रहण लक्ष्मी जी के साथ भगवान ने विवाह किया था इसी हाथ से, तो मेरे हाथ को लक्ष्मी के स्पर्श का सौभाग्य मिला है, और गजेंद्र को भी मैंने इस हाथ से पकड़ा था, हाथ से पकड़ करके ही वो सरोवर से लाए थे बाहर, और इसके बाद ग्रह का मस्तक काट। तो मेरे हाथ को अनुभव है लक्ष्मी के स्पर्श का और गजेंद्र के स्पर्श का, लेकिन मेरे हाथ तरस रहे हैं तुम्हारे मुखाम्बुज का स्पर्श करने के लिए। भगवान मानो ऐसा कहते हैं, तुम्हारे मुख कमल को छूने के लिए हमारे हाथ तरस है। और फिर भगवान कहते हैं तुमने जो रसार्पण किया, रस अर्पण किया है, और बलि महाराज ने रसार्पण किया था मुझे, रसा दिया था, पूरा पृथ्वी दे दिया था, तो मह्यम प्राग बलिना रसार्पणम यह प्राकार जातः करह तेना द्रव न शरीर मत्र तू रस स्पर्शे न साद्रम बहु। बलि महाराज ने मुझे रसार्पण किया था तो उससे मेरा केवल हाथ भर आर्द्र हुआ था, मतलब हाथ में जल दिए थे पृथ्वी दान करने के लिए। तो भगवान कहते हैं बलि महाराज ने रसार्पण किया था तो मेरा केवल हाथ भर आर्द्र हुआ था, गीला हुआ था, लेकिन तुमने रसार्पण किया तो मेरा पूरा देह गीला हो गया है, तो इसीलिए तुम बलि से कई गुना बढ़ करके धन्य हो तुम। तो भगवान के बाह पर, चिबुक पर, छाती पर, सब जगह रस अर्पण हुआ था, तो धन्य बलि से तुम कई गुना बढ़ करके। बलि महाराज ने पूरा पृथ्वी दान दिया था लेकिन भगवान का केवल हाथ भर गीला हुआ था। वो पानी लेकर के संकल्प कराए थे, जब दान दिया जाता है तो देने वाला और लेने वाला दोनों संकल्प करते हैं। देने वाला संकल्प करता है कि मैं दे रहा हूं इस समय इस स्थान पर, डेट बोला जाता है और स्थान बोला जाता है ना, संकल्प करते हैं तो स्थान बोला जाता है, जम्बू द्वीपे भरत कंडे, उसमें भी और कई कई क्षेत्र हैं, आर्जावर्ते आर्जावर्ते और दिल्ली नगरे, उसमें भी कोई स्थान बोलते हैं और आते आते अपने घर को बोलते हैं लास्ट, और काल काल में बोलते हैं श्वेत बाराह कल्पे अमुक वासरे अमुक मासे अमुक पक्षे दिने तिथौ, तब संकल्पम करिष्ये, इस तरह से बोलते हैं। तो लेने वाला संकल्प करता है कि मैं आपके इस दान को ले रहा हूं और मैं इसको इस कार्य में लगाऊंगा, ये संकल्प होता है। भगवान ले रहे थे और बलि महाराज ने उनको जल दिया और बलि महाराज भी अपने हाथ में जल लिए। तो भगवान कहते हैं कि उस जन्म में बलि महाराज ने हमको दान दिया लेकिन केवल हाथ भर, हाथ ही रस से सिक्त हुआ, लेकिन तुमने तो पूरा देह रस से सिक्त कर दिया, इसीलिए तुम बहुत अच्छी हो, धन्य, तुम में दातृत्व कई गुना अधिक है बलि से, तुम्हारा दान बढ़ करके। ये दो अंगुली क्यों ऐसे किए, तो इस पर मानो भगवान कहते हैं इस संसार में दो ही स्त्रियों से मेरा संबंध है, एक तो गोपियों से और एक तुमसे। ये दो कोटि सिद्ध करने के लिए भगवान अपने दो अंगुली को ऐसा कह रहे, भगवान सीधा कर दिए उसको। क्यों सीधा कर दिए? दर्शन का फल दिखाने के लिए। तो भगवान ने कहा मतपाद भाजाम न सताम पीह संदर्शनम भोग फलम क्वचित स्यात्। मेरे चरणों के जो सेवक हैं, मेरे भक्त साधु जनों का दर्शन भी पृथ्वी पर कभी निष्फल नहीं जाता है, तो मेरा दर्शन कैसे निष्फल होगा, मैं तो उनका स्वामी हूं। इसीलिए भगवान अपने दर्शन का तत्काल फल दिए, उसे सीधा किया, उसके कुटिल अंग को, टेढ़े अंग को भगवान ने सीधा किया। इस पर कहते हैं भाई पुत्र के द्वारा अगर कोई गलती हो गई हो तो पिता उसको सुधार देता है, तो ब्रह्मा के द्वारा की गई गलती को भगवान सुधार रहे हैं, कि भगवान ब्रह्मा जी के बाप हैं, है ना। मैंने देखा कि ब्रह्मा क्या ये रूप बनाया है, इतना सुंदर चेहरा बनाया और शरीर टेढ़ा बना दिया, तो पुत्र के द्वारा गलती हो गई थी। तो पिता ने सुधार दिया। इसको कितना सुंदर श्लोक में कहा जा रहा है, सुनिए। पुत्रेण जत कृतम असाधु तदस्त तंद्रह कुर्यात पिता भुवि जथा भविता नवद्यम युक्तम विरंचि रचितम कुटिलांगमस्यः चक्रे ऋजु सुकरतः सहि पद्मनाभ। पद्मनाभ भगवान को कहते हैं, उनके नाभि से पद्म निकला और उसी पद्म से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। तो पद्मनाभ ने अपने पुत्र की गलती को सुधार दिया। ब्रह्मा जी ने तो टेढ़ा शरीर बनाया था लेकिन भगवान ने सीधा कर दिया। तो ये सिद्धांत है कि पुत्रेण जत कृतम असाधु, यदि पुत्र के द्वारा कोई गलत काम हो गया हो तब अस्तुतंड सावधान होकर के कुर्जा पिता भूई जथा भविता अनुवाद्य, लेकिन पिता उसको ठीक कर देता है। देखा गया है ना, बच्चा कोई गलती कर दिया तो पिता उसको ठीक कर देता है। तो उसका शरीर कुब्जा का ब्रह्मा ने बनाया था, बनाने नहीं आया था, तो भगवान ने मतलब ब्रह्मा जी के पिता ने उस शरीर को ठीक कर दिया। जुक्तम विरंच रचतम कुटलांग मस्या चक्रे रिजु स्वकर्प, अपने हाथ से भगवान ने अपने पुत्र की गलती को सुधार दिया, ठीक कर दिया। ब्रह्मा ने कुटिल बनाया, भगवान ने सीधा बना दिया। अब कहते हैं कि बताओ, जिनका नाम लेने से तीनों ताप संसार से चले जाते हैं, उनके हाथ का जिसको स्पर्श हुआ उसके त्रिवक्र ताप क्यों नहीं चले जाएंगे? इसको संस्कृत के एक शब्द से व्यक्त किया जा रहा है, त्रिवक्रताप हृति शब्द है। ध्यान से सुनिए, त्रि का अर्थ है तीन, त्रिवक्रता एक जगह लगे, वक्रता का अर्थ टेढ़ापना, तीन जगह का टेढ़ापना वक्रता, और अपहृति का अर्थ है हर लेना। और इतने ही शब्दों से फिर दूसरा अर्थ करते हैं त्रिवक्र ताप हृति, तीन भयावह ताप को हर लिया, त्रिवक्र ताप हृति, और त्रिवक्रता अपहृति। शब्द उतने ही हैं तो श्लेष से अर्थ किया जा रहा है। एक प्रकार से भगवान ने कुब्जा के तीनों टेढ़ापन को क्या दूर किया, तीनों ताप हर लिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो वक्र ताप है, वक्रता अपहृति और वक्र ताप हृति, त्रिवक्रताप हृति त्रिवक्रताप हृति, बहुत ही सुंदर रचना है। मृदु भाषणांग रागार्पण निज कर्तस तद विलेपन तृतीय, भगवान ने तीन जगह का टेढ़ापन क्यों दूर किया, एक ही जगह का किए होते तीनों टेढ़ापन क्यों दूर कर दिया, तीनों ताप क्यों हर लिए? क्योंकि कुब्जा ने तीन सेवा भगवान की किया था, इस पर कह रहे हैं। एक तो मृदु भाषण, जब भगवान ने सुंदरी कहा तो वो भी सुंदरी बोली और कह दिया कि आपके अलावा इस अंगराग का दूसरा कोई पात्र नहीं, कितना सुंदर वचन था। तो मृदु भाषण, और दूसरा था अंगराग अर्पण, वो दे देना अंगराग, और तीसरा था अपने हाथ से भगवान के शरीर में लगाना, ये तीन सेवा किए, इसलिए भगवान ने उसका तीन जगह का टेढ़ापन दूर किया। स्वाभाविक है, मृदुभाषण, अंगरागार्पण और निज कर तद विलेपन, अपने हाथ से सेवा की। अपने हाथ से भगवान की सेवा करना बहुत बड़ी बात है। तो कितने सेठ साहूकार मंदिर बना देते हैं और पुजारी रख देते हैं, सेठ लोग भगवान की सेवा नहीं करते हैं, पुजारी करते रहते हैं और सेठ को तो दुकान से फुर्सत ही नहीं रहती। लेकिन अपने हाथ से सेवा करनी चाहिए, वो भक्ति कही गई। ऐसा नहीं कि कुब्जा दे देती हो कटोरी और सब कुछ अंगराग ले लो लगा लो, नहीं, अपने हाथ से लगाया उसको, ये हाथ भगवान की सेवा में लगना चाहिए। कितने लोग पैसा दे देंगे सेवा नहीं करने जानते, ठीक है वो भी अच्छा है, लेकिन अपने हाथ से सेवा करनी चाहिए। बहुत लोग आलसी होते हैं, कभी कभी तो अपने पत्नी को केवल सेवा में लगा देते हैं, अपने श्रृंगार नहीं करते हैं भगवान कुछ तो। कह देते वो करेगी, वो है ना, वो करेगी, और आप क्या करेंगे? अपना हाथ भी तो लगना चाहिए ना। सीखनी चाहिए सेवा भगवान की प्रतिदिन, मंदिर मार्जन, श्रृंगार, कुकिंग, ये सब सेवाएं हैं भगवान की। वास्तव में ये जब हम करेंगे तभी हम नित्य लीला में भगवान की सेवा पा जाएंगे, ऐसे नहीं पाएंगे। अभ्यास ही नहीं होगा हाथ को, चरण को, आंख को, ये सब अभ्यास होना चाहिए। तो रजक अपने कर्म से शरीर का नाश पाया और कुब्जा ने अपने कर्म से दिव्य देह पाया। देखिए उसी मथुरा की गली में ये दो फल मिल गए। एक जगह एक लाश गिर गई और दूसरे जगह कुरूप शरीर दिव्य हो गया। भगवान वही है, उनमें वही शक्ति थी, और उसको भी यही बात भगवान ने कहा था कि हमको कपड़ा दे दो तुम्हारा शीघ्र ही हित होगा यदि दोगे तो। लेकिन हित क्या, वो देता क्या, उल्टे गाली देने लगा, डांटने लगा, इसलिए उसका उसकी दुर्गति की गई। इसलिए इस लीला से सब सीखना चाहिए भगवान की सेवा। तो रूप है माधुर्य गुण और उदारता से संपन्न होकर वह कुब्जा बात देखा थी भगवान उसे सीधा करके, और इसके बाद जब जाने के लिए तैयार हुए तो कुब्जा ने भगवान का पीतांबर पकड़ लिया सबके सामने। पीतांबर उनका दुपट्टा पकड़ करके और कहे कि हे देव, हे प्रिय, आप हमारे घर चलिए, आप तो प्रदेश के हैं, आपका यहाँ कोई घर नहीं है। जानते थे कि इसका कोई घर नहीं है, तो वृंदावन में रहने वाला लड़का है, तो कहती आप हमारे घर चलिए, वहीं रहिए। और केशव शब्द का प्रयोग किया गया, क का अर्थ है ब्रह्मा जी और ईश का अर्थ होता है शिव जी, और व का अर्थ होता है कंट्रोलर। जो ब्रह्मा और शिव के भी कंट्रोलर हैं, उन भगवान का पीतांबर पकड़कर कुब्जा कंट्रोल कर रही है, वो जाने के लिए तैयार है। और बलराम जी वहीं भगवान के साथ है, तो उनका पीतांबर पकड़ करके और कहती है कि आप ऐसे नहीं जा सकते, आप चलिए हमारे घर, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, आप हमारे घर रहिए। आप इतना सुंदर देह दिए, इस देह के द्वारा मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। और वास्तव में कुब्जा के मन में काम विकार उत्पन्न हुआ, भगवान इतना सुंदर है कि ये इच्छा होना स्वाभाविक थी। लेकिन जब भगवान उसके घर गए, बाद में जाएंगे अभी नहीं, जब गए उसके घर उद्धव जी के साथ, तो अपना पूरा श्रृंगार करके भगवान के पास खड़ी थी, आ नहीं रही थी, तो भगवान अपने हाथ से उसका हाथ पकड़ करके पलंग पर बैठाए, और जब ही भगवान ने एक आलिंगन किया उसी समय कुब्जा के मन के सारे विकार नष्ट हो गए, वो बिल्कुल शुद्ध हो गई, और तुरंत वेद से उतर करके भगवान के चरण को अपने वक्षस्थल से छाती से लगा लिया। ऐसा भागवत में लिखा गया है, उसके मन की अशुद्धि सारी चली गई। तो भगवान का ये प्रभाव है, ये दिव्य प्रभाव है। उसने अंगराग अर्पण किया, चंदन दिया, लेकिन भगवान ने उसको बहुत दिया। भगवान अपने स्टैंडर्ड से देते हैं, उनका स्टैंडर्ड बहुत बड़ा है, जीव कल्पना नहीं कर सकता। गोपियों जैसा शुद्ध हो गई कुब्जा, गोपियों के हृदय में भगवान के प्रति काम विकार नहीं है, प्रेम है, सेवा करूं ये करूं। जैसे गोपियां दिन भर इसी चिंता में रहती थी कि प्रियतम वन में गए हैं गाय चराने के लिए, उनके पैर में पत्थर चुभ रहा होगा और अंकुर कंटक लग रहा होगा, हाय हाय कैसे चलते होंगे, यही दिन भर सोचती रहती थी। काम विकार का तो कोई प्रश्न ही नहीं। कुब्जा भी इसी तरह से शुद्ध हो गई। तो जब भगवान का दुपट्टा पकड़ लिया उसने बलराम जी के सामने और कही कि आप हमारे घर चलिए, आप कुछ दिन रहिए, भगवान ने कहा कि मैं, मेरा समाज है, मैं अकेले कैसे जाऊं? कहते नहीं, हमारा घर बहुत बड़ा है, आप सभी गोपों के साथ, भाई के साथ चलिए। तो भगवान तो अब अपने बड़े भाई के सामने एक स्त्री पकड़ ली दुपट्टा तो अब बड़े संकोच में पड़े, लेकिन हंसते हुए कहे, भगवान कहते हैं एस्यामिते गृहम सुभ्रु, हे सुंदर भौंहाली, मैं तुम्हारे घर आऊंगा, लेकिन साधितार्थ, जब मैं अपना अर्थ साध लूंगा, अर्थात कंस का वध कर लूंगा, तब तुम्हारे घर आऊंगा। अथवा साधितार्थ का अर्थ है कि मैं कंस का वध कर लूंगा, इसके बाद पढ़ने जाऊंगा अवंतिका, उसके बाद आऊंगा तुम्हारे घर। और भगवान केवल एक दिन गए थे कुब्जा के पास और उद्धव जी के साथ, और उसको शुद्ध करने के लिए गए थे। भगवान किसी को देखे या छुए वो सब पूर्ण है, तो सब प्राकृतिक जगत में कोई जरूरी नहीं है कि व्यक्ति अनुसरण करे, बिल्कुल भगवान के दर्शन और छूने से ही सारे मनोरथ पूरे हो जाते। तो भगवान कहे मैं आऊंगा, एष्यामि ते गृहम शुभ्रु, हे सुंदर भाव वाले, ते गृहम, तुम्हारे गृह में, घर में मैं आऊंगा, लेकिन साधितार्थ, तुम्हारा घर कैसा है? पुंसा माधि विकर्षम, पुरुषों के मानसिक चिंता को दूर करने वाला, और वैसे अग्रहाणम न पांथानम तम परायणम, हम भी तो अग्रह हैं, हमारा कोई घर नहीं है मथुरा में। यह गृह से तात्पर्य भगवान कुछ और कह रहे हैं, कुब्जा कुछ और समझे और बलराम जी और सब दूसरी बात समझे। तो बलराम जी और गोपों के लिए भगवान ये कह रहे हैं उसको सुनाकर, उन लोगों को सुनाकर कि हाँ हम लोगों का कोई घर नहीं है मथुरा में, तो अपने आप बिना किराया दिए तुम्हारा घर मिला तो ठीक ही है, हम वहां रुकेंगे, आएंगे लेकिन कुछ दिन के बाद। लेकिन कुब्जा के लिए क्या कह रहे हैं, हम अभी अग्रह हैं, अग्रह का अर्थ होता है बिना स्त्री के, न गृहम गृहमित और गृहिणी गृह उच्चते, गृह को गृह नहीं कहते हैं, गृहिणी को गृह कहा जाता है, संस्कृत में कहा गया न गृहम गृहमित्याहु, गृह को गृह नहीं कहते महाविद्वान लोग, गृहिणी गृह उच्चते, गृहिणी को गृह कहा जाता है, जैसे गृहस्थ है, गृहस्थ का अर्थ ये नहीं है कि गृह में घर में रहने वाला व्यक्ति, गृहस्थ का अर्थ है गृहिणी के साथ रहने वाला, नहीं तो सन्यासी भी तो गृह में ही रहते हैं, लेकिन उनको गृहस्थ नहीं कहा जाता है, जो गृह में स्थित हो उसको गृहस्थ कहते हैं। तो सन्यासी आदि भी तो गृह में ही रह रहे हैं, परंतु गृह का अर्थ ही है गृहिणी पत्नी। तो भगवान कहते हैं कि अभी मैं अविवाहित हूं, तो रास्ता चलते चलते पत्नी मिल गई, अब इससे बड़ा लाभ क्या होगा, वो ये अर्थ समझे, कुब्जा ये अर्थ समझ रही, लेकिन बलराम जी आदि ये समझ रहे कि कृष्ण मजाक कर रहे, हाँ भाई घर मिल गया रहने के लिए, ठीक है हम आएंगे। भगवान ऐसे बोल रहे हैं, वो तो विद्वत शिरोमणि है कि दोनों दो बात समझे। भगवान ने जब उसे कहा कि हाँ अभी मेरा विवाह नहीं हुआ है, तो हम तो बिना स्त्री के हैं, तो बहुत अच्छा हुआ विधाता की कृपा हुई कि ऐसे रास्ता चलते हमको पत्नी मिल गई थी सुंदरी, तो इससे क्या चाहिए, लेकिन अभी कुछ काम है, मैं कार्य पूरा करके तब तुम्हारे घर आऊंगा। भगवान इस तरह से बोले और बहुत ही सुंदर वचन से आश्वासन दे करके भगवान आगे बढ़े और वह अपने घर गई। तो कुब्जा रात दिन केवल कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करती रही कई महीनों तक, कब हमारे प्रियतम आएंगे, वो और कुछ भी नहीं जानती थी, रात दिन केवल कृष्ण की प्रतीक्षा करती थी। और बाद में श्री भगवान जाएंगे बलराम उद्धव जी के साथ, बलराम जी के साथ वे जाएंगे अक्रूर के घर और उद्धव जी के साथ उसके घर। जाकर भगवान ने कुब्जा का सबसे पहले हाथ पकड़ा, इस पर हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि भगवान ने सोचा कि पहले पानी ग्रहण कर लो, अधर्म न हो और उद्धव का अर्थ अग्नि भी होता है,
तो अग्नि के सामने उन्होंने पाणी ग्रहण किया। कई कई भगवान की लीलाओं में सब मर्यादा की रक्षा की गई, परंतु इन सब लीलाओं को कहने सुनने का एक निश्चिंत अवसर चाहिए और उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिशन चाहिए, कुछ संस्कृत का थोड़ा सा ज्ञान और पर्याप्त समय और लालसा, तब आनंद आता। हरे कृष्ण राशन कहते
पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वत देव गौरवाणी सारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। विसृज्यमाद्या वाण्या तां व्रजन् मार्गे वणिक्पथैः नानोपायन ताम्बूलस्रग्गन्धैषाग्रजोर्चितः तां माद्या वाण्या विसृज्य मार्गे व्रजन् वणिक्पथैः नानो पायन तांबुल स्रगंधय साग्रजो अर्चित ताम विसृज्य। जब कुब्जा ने भगवान से कहा कि आप हमारे गृह चलिए, भगवान ने कहा कि हे शुभ्र, मैं तुम्हारे घर आऊंगा जब मैं अपना अर्थ पूरा कर लूंगा। अर्थ का अर्थ है प्रयोजन, मेरा कुछ प्रयोजन है इस नगर में मैं घूम रहा हूं, कंस बधादि प्रयोजन, उसको पूरा करके तब मैं आऊंगा। निश्चित ही मैं तुम्हारे घर गृह को अपना गृह समझता हूं, तुम धैर्य रखो मैं आऊंगा। इस प्रकार माधव्या वाण्या ताम विसृज्य, भगवान ने कुब्जा को छोड़कर अब आगे प्रस्थान किया, तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं माधव्या वाण्या, बहुत मधुर वाणी से भगवान बोले। उससे भगवान ने कुब्जा का तिरस्कार नहीं किया, बहुत मधुर भाषा में उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा, तुम चिंता मत करो। भगवान का स्वभाव है, ऐसा नहीं हुआ कि समाज में भगवान अपने को डिमोरलाइज्ड फील किए और उस स्त्री को कड़ा वचन बोले कि तुम क्यों ऐसी बात करती हो, तो मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, ये नहीं करूंगा, ऐसा नहीं कहा। बहुत माधवी वाणी से कहा। माधवी वाणी का अर्थ होता है मधु से सिक्त वाणी, मीठी वाणी में भगवान ने सुना है। किसी व्यक्ति को वचन बहुत मीठा बोलना चाहिए। मीठा वचन बोलना बड़प्पन का लक्षण। सर्वदा सबके साथ बहुत मधुर वचन का प्रयोग करना चाहिए। हिंदी में एक दोहा में कहा गया है कि कोयल क्या किसी को देता है और कौआ क्या किसी का छीनता है कि लोग कौआ से प्रेम नहीं करते हैं। तो काम काम करता रहता है लेकिन उससे लोग प्रेम नहीं करते हैं। और कोयल से क्यों प्रेम करते हैं, क्योंकि कोयल बहुत मधुर वचन बोलना जानता है। कुछ तो निसर्ग होता है, स्वभाव होता है, उसको प्रैक्टिस से आदमी नहीं बना सकता है, हार जाएगा। प्रैक्टिस करते करते मधुर नहीं बोल पाएगा। जैसे मान लीजिए कौआ जैसा जिसका बोलने का स्वभाव ही है जन्म से, तो उसको कोयल कहाँ से बनाया जा सकता है। परंतु फिर भी कुछ प्रैक्टिस से सुधार किया जा सकता है। कुछ लोगों को गाली देकर बोलने की आदत होती है, जब तक दूसरों को कड़ा नहीं बोलेंगे तब तक उनके मन में ही संतोष नहीं होगा। हाँ, तो मीठा बोलने का अभ्यास करना चाहिए। कुब्जा को इस तरह मीठे वचन से धैर्य देकर भगवान आगे चले तो पथ में दोनों ओर मार्केट बाजार बहुत अच्छा, बड़े बड़े व्यापारी दुकानदार थे और सभी कितने भाग्यशाली थे इसको क्या ब्रह्मा भी कह सकते हैं। जिस बाजार में भगवान घूम रहे हैं और वे दुकानदार सामने आ जाते हैं और अपने सोना चांदी के हार को कोई लाता है, कोई कपड़ा ला रहा है, कोई मिठाई ला रहा है, जिसके पास जो कुछ था वो ला रहे थे देने के लिए। व्रजन मार्गे वणिक पथ है, किनके द्वारा उपहार दिया जा रहा था? वणिक पथ है। वणिक का अर्थ होता है व्यापार और पथ का अर्थ है मार्ग। कुछ ऐसे लोग हैं इस संसार में जो व्यापार करते हैं, व्यापार ही उनकी जीविका है। तो ऐसे व्यापारी वर्ग आया करके भगवान का स्वागत कर रहा था। आप लोगों ने पहले सुना कि ब्राह्मण आशीर्वाद दे रहे थे, तो ब्राह्मण अधिक से अधिक भगवान को क्या दे रहे थे? श्रगंध, वो चंदन लगा रहे थे, कुछ अंकुरित बीज डाल रहे थे भगवान पर, और चावल अक्षत कहते। तो ब्राह्मणों के पास जो धन था उसको डाल करके और भगवान को आशीर्वाद दे रहे थे। परंतु वाणिज्य करने वाले लोगों के पास बहुत धन था, तो वे लोग ला ला करके भगवान को रथ में और नाना उपायन, और कोई पान ला रहा था, कोई गंध, कोई और माला, और बलराम जी के साथ भगवान का वे लोग स्वागत कर रहे थे। इस तरह सबका उपहार और स्वागत स्वीकार करते हुए और सबसे मीठा वचन बोलते हुए भगवान मथुरा में विहार कर रहे थे। मथुरा भगवान का अपना जन्म स्थान है, वहाँ के हैं, वहीं प्रकट हुए हैं इस जगत में। वास्तव में यदि विचार किया जाए कि इस विश्व में सबसे पवित्र नगर कौन है, सबसे महान, तो वो है मथुरा, जहाँ पर ब्रह्म है। घर में तो छोड़ दीजिए, जेल में प्रकट होते हैं भगवान वहां के। वहां के कारागृह में प्रकट हुए। वह भगवान का धाम चिन्मय है, देखने में लगता है कि यहाँ ये पत्थर है, या वही साधारण वृक्ष है, या पशु कुत्ते सुअर या गाय घूम रहे हैं, सब कुछ चिन्मय है, दृष्टि नहीं है मनुष्यों को देखने की उस धाम की महिमा को, वास्तव में चिन्मय धाम है जहां भगवान अपने रूटीन से घूम रहे हैं और देखना चाहते हैं। यह स्थान, टाउन हॉल, कुछ न कुछ आकर्षण की वस्तुएं सब जगह होती हैं, तो भगवान देख रहे हैं, घूम रहे हैं और सभी स्वागत कर रहे हैं। उस मथुरा में केवल एक व्यक्ति था जिसने भगवान का स्वागत नहीं किया, वो था रजक, बाकी सब स्वागत कर रहे हैं और भगवान उनके द्वारा दिए हुए उपहार को स्वीकार कर रहे थे। कोई पान लेकर के आ रहा है तांबूल, तो भगवान उसको खा रहे सामने। भगवान इतने प्रेमी हैं कि भक्तों के दिए गए उपहार को स्वीकार करते हैं। इस तरह अर्चित भगवान का सम्मान हो रहा था। अब आगे के श्लोक में स्त्रियों के द्वारा कृष्ण दर्शन का वर्णन कर रहे हैं। पुनः श्रील सुखदेव गोस्वामी देख रहे हैं मथुरा में सबसे अधिक आकृष्ट कृष्ण के प्रति जो वर्ग है वह है स्त्री वर्ग। पुनः कह रहे हैं, तद्दर्शन स्मरक्षोभाद आत्मानम नाविदं स्त्रियः विश्वस्त्रवासः कवर वलया लेख्य मूर्तयः। तद्दर्शन स्मरक्षोभाद, श्री कृष्ण के दर्शन के कारण मन में जो कृष्ण के प्रति प्रेम उमड़ता था, उस प्रेम की बाढ़ में स्त्रियां अपने आप को न आविदन, अपने को स्मरण में नहीं रख पाती थी कि मैं इस घर की हूं, मेरा ये सम्मान है, मेरा ये काम है, मेरे ये पति हैं, अपने देह को भूल जाती थी कृष्ण को देखकर। यह है भगवान का असमूर्ध सौंदर्य, इतना सुंदर है कि कोई भी स्त्री अपने को भूल जाती थी, अपने घर को भूल जाती थी, ऐसे भूल जाते थे, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे चित्र में बनाई हुई मूर्ति। हम लोग यहां देखते हैं चित्र में बनाई हुई मूर्तियां हैं, उनकी न पलक गिर रही है, न हाथ हिल रहा है, कुछ नहीं, ऐसे खड़ी की खड़ी रह जाते थे कृष्ण को देखने में। इतना सुंदर भगवान है, इतना सुंदर है कि बिल्कुल जड़ की तरह देखते रह जाते थे। पलक गिरना बंद हो जाता था, हाथ का संचालन बंद हो जाता था, अपलक नेत्र से खड़ी की खड़ी देखती रह जाती, इतना सुंदर भगवान। तो भगवान की सुंदरता का एक हल्का दिग्दर्शन कराया जा रहा है। दिग्दर्शन का अर्थ होता है दिशा का दर्शन, जैसे संस्कृत में कहते हैं शाखा चंद्र न्याय। कभी कभी हम लोग चंद्रमा को दिखाते हैं कि देखो चंद्रमा उस वृक्ष के ऊपर उगा हुआ है, चंद्रमा उगते हैं तो वे या तो समुद्र में उगते हैं या किसी पर्वत के ऊपर दिखाई देते हैं, उदयाचल कहते हैं, सूर्य ऐसा करते हैं, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा ऐसे उगते हैं। तो कभी कभी हम लोग वर्णन करते हैं, किसी को दिखाते हैं कि देखो चंद्रमा कहाँ है, तो कहते हैं देखो उस वृक्ष के ऊपर चंद्रमा दिखाई दे रहा है, लेकिन वह वृक्ष से बहुत अधिक ऊंचा है, उतना ही ऊंचा नहीं है। वर्णन करते हैं को शाखा चंद्र न्याय कहते हैं संस्कृत में। तो चंद्रमा का इस तरह से वर्णन किया था। तो भगवान कितने सुंदर हैं, उनकी सुंदरता को इनडायरेक्ट में बताया जा रहा है कि उनको देखने वाली स्त्रियां चित्र में बनाए हुए मूर्ति की तरह बिल्कुल निष्पंद हो जाती थी, खड़ी की खड़ी रह जाती, देखती की देखती रह जाती। और जब भगवान चले जाते थे तब भी कुछ देर तक उसी भाव में भी हो रहती थी और आंखें बंद हो जाती थी जाने के बाद। जब भगवान दृष्टि से ओझल हो जाते थे, अंतर्हित हो जाते थे, तो उनकी दृष्टि बंद हो जाती थी और खड़ी रह जाती थी। घर के लोग कहते थे, क्या हो गया तुमको, क्या कर रही हो। कभी कभी स्वजन ऐसा समझते थे कि इसको अकस्मात भूत लग गया या कोई महारोग लग गया, इसको लकवा मार दिया, क्या हो गया, लोग ऐसा विचार करते थे। और ब्रज में तो प्रतिदिन ऐसी घटना होती थी, नवविवाहिता गोपी आई थी, उसने देखा कृष्ण को, ऐसे रोज रोज घटना होती थी और कई घरों में। तो गोपी रोने लगती थी और बेहोश हो जाती थी, तो उसको घर के लोग कहते थे, क्या हो गया क्या हो गया। सास कहती थी कि कोई ओझा बुलाओ भूत झाड़ने वाला, कोई कहता था कि वैद्य को बुलाओ, फिर क्या हो गया क्या हो गया। तब तक एक सखी आकर के कहती है, कुछ नहीं हो गया है, कृष्ण के बंसी की आवाज से इसकी ये दशा हुई है। सबसे बड़ा उपचार है कि आज से कृष्ण के हाथ से बांसुरी छीन कर फेंक दो, बस अब रोग नहीं हो। ये उपचार कर। इतनी मादक ध्वनि है भगवान के बंसी की, और उनका रूप, उनका गीत, उनका हास्य, उनकी चितवन अद्भुत। यहां श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, उन स्त्रियों के विश्रस्त वास, इतना भगवान में तल्लीन हो जाती थी, इतना विभोर हो जाते थे कि विश्रस्त वास, उनके वस्त्र ढीले हो जाते थे। वस्त्र का ध्यान नहीं था, हम विश्रस्त वास का अर्थ है कि सिर पर जो आंचल रहता था वो गिर जाता था, उनको ध्यान नहीं रहता था, वस्त्र ढीले हो जाते थे। और कबर बलया, कबर का अर्थ है सिर की चोटी कभी कभी खुल जाती थी, बाल खुल जाता था। कबर बलय, बलय मतलब बाला, हाथ का कंगड़ भी कभी कभी गिर जाता था, स्तब्ध हाथ हो जाता था, इसीलिए गिर जाता था, कहीं विश्रस्त हो जाता था, या एक जगह से दूसरी जगह सरक जाता था, आ जाता था। लेख्य मूर्तया, लेख्य का अर्थ है चित्र और मूर्ति का अर्थ है मूर्ति। हम लोग देखते हैं किसी भी चित्र में मूर्तियां बनाई गई भगवान की, और ऐसे वो दिखती थी मथुरा की नारियां, जैसे लगता था कि चित्र में खड़ी मूर्ति है, जीवित नहीं है। जीवित स्त्री रहेगी तो कुछ न कुछ पलक गिरेगा या हाथ का संचालन होगा, सिर हिलेगा, कुछ न कुछ हिलेगा, लेकिन ऐसे स्तब्ध हो जाते। इतना सुंदर भगवान है, और विशेष करके वनितोत्सव रूप शीलम, भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है वह स्त्रियों के लिए और अधिक उत्सव है, और अधिक आकर्षक। भगवान का और जो रूप है उसको वो स्त्रियां खास पसंद नहीं करती। अब नृसिंह भगवान को कौन स्त्री पसंद करेगी, उनकी पत्नी तो उनके निकट गई ही नहीं। ब्रह्मा जी भेजे कि माता जी जाइए, आप समझाइए भगवान को, लेकिन वो जा रही थी, उनको बड़ा अभिमान था कि हाँ हमारे पति हैं, मना दूं। और जब सामने आई और भयानक दांत नाक और आंत की माला देखा तो भाग गई। वो कहते हैं कि इस समय ठीक मूड भी नहीं है, हो सकता हम पर चला दे थप्पड़। लक्ष्मी जी को विश्वास नहीं रहा, इतना भयानक थे भगवान, उन्होंने सोचा कि विकराल नख वाले हाथ को कहीं चला दिए तो फिर तो हमारी जिंदगी खराब हो गई। लक्ष्मी जी नहीं गए, प्रहलाद महाराज चले गए भगवान के पास। अच्छा, और रूप हैं जैसे बराह देव हैं, तो बराह देव को क्या कोई स्त्री प्रेम करेगी, बड़े बड़े दांत निकले हैं, कितना भी सुंदर हो लेकिन बराह है ना। और कोई मान लीजिए परशुराम अवतार, तो कुल्हाड़ी और परशु लेकर के विकराल मार काट का काम करते हैं। भगवान कपिल देव हैं तो वो बिल्कुल सीधे साधे साधु महात्मा है, उनको स्त्री से क्या होती।
भगवान कृष्ण का जो रूप है वो स्त्रियों के लिए सर्वाधिक आकर्षक है। शायद भगवान इसलिए अपने को प्रकट किए कि और लोग तो पुरुषों के चित्त को खींच लेते हैं, लेकिन मैं चलूं तो समान भाव से पशु पक्षी मनुष्य, मनुष्यों में स्त्री पुरुष बालक वृद्ध सब में कृष्ण भावना भर दूंगा, अपना प्रेम भर दूंगा। जब तक भगवान आकर्षक रूप में नहीं दिखाई देंगे तब तक उनसे कोई कैसे प्रेम करेगा। इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति सौंदर्य रसिक है, सुंदरता पसंद करता है, और कारण क्या है जानते हैं? कारण यह है कि भगवान के उसी सुंदर रूप के साथ जीव का संबंध है, वह प्रकारांतर से उसी सुंदरता को और लोगों में देख ढूंढ रहा है, पर उसको पता नहीं है कि जिस सौंदर्य की लालसा उसके मन में है वह सौंदर्य वास्तव में श्री कृष्ण का है। क्योंकि जीव में सौंदर्य वासना है और प्रेम वासना है, प्रिय वासना है, तो वह उसी कृष्ण को खोज रहा है, लेकिन मूर्खता है। जहां है वास्तव में उन भगवान को नहीं खोज रहा है, दूसरे में सौंदर्य देख रहा है। और दूसरे में सौंदर्य क्या है? क्या सौंदर्य? सौंदर्य दो प्रकार का होता है, एक आकृति का सौंदर्य और प्रकृति का सौंदर्य। आकृति के सौंदर्य का अर्थ है आकार बहुत ही सुंदर है, और प्रकृति के सौंदर्य का अर्थ है कि जो वस्तु है, प्रकृति स्वभाव उस वस्तु में नहीं तो वह बहुत सुंदर है। लेकिन इस जगत में आकृति का कुछ सौंदर्य तो है मनुष्यों में देवताओं में, लेकिन उनकी जो प्रकृति है देह की वो है पंच भौतिक जड़। जैसे मनुष्यों का देखिए, मनुष्यों के शरीर में क्या प्रकृति है? ऊपर चाम है प्लास्टिक जैसा, उसके बाद मांस है, हड्डी खून पीभ मल मूत्र, इसमें क्या सौंदर्य है? कोई सौंदर्य नहीं। आरती करके वही रख दीजिए, सब लोग दूर से ही ले लें भावना से, जरूरी नहीं सबके पास ले जाए, दूर से ही सब लोग आरती ऐसे कर लीजिए। आजकल तो बहुत काम रिमोट कंट्रोल से होता है। तो मैं बता रहा था कि प्रकृतिगत सौंदर्य और आकृतिगत सौंदर्य तो मनुष्यों में या देवताओं में है सुंदरता, लेकिन केवल आकृति का सौंदर्य है। प्रकृति क्या है? जड़ है, मायामय, माइक, क्षणभंगुर और जड़, अचित पदार्थ। अचित का अर्थ है जिसमें चेतना नहीं। और चेतना भी नहीं है और सब कुत्सित पदार्थ है, दुर्गंधित पदार्थ। मनुष्यों के देह में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें सुगंध है ना। यदि शरीर का विश्लेषण किया जाए, चाम को एक तरफ रख दिया जाए, हड्डी को एक जगह और चर्बी मल मूत्र सब एक जगह, तो इसमें कौन सुंदर वस्तु है बताइए? और इसी का समवेत रूप है शरीर, तो वास्तव में प्रकृतिगत सौंदर्य बिल्कुल नहीं है। और आकृति का भी सौंदर्य वह नहीं है जो भगवान में है। तो भगवान आकृति से भी सुंदर है और प्रकृति से भी सुंदर है। उनके शरीर में चिन्मय आनंद के अलावा और कुछ नहीं है, उनके शरीर में और उनमें भेद नहीं है, चिन्मय सब कुछ। उनका नाक, उनका केश, उनका कुछ भी एक समान। वास्तव में उसी सुंदरता को हम लोग खोज रहे हैं। तो भगवान कृपा करके इस जगत में प्रकट हुए थे और
अपने को दिखा रहे थे, अपनी वाणी, मुस्कान, अपना सुंदर श्री विग्रह दिखा दिखा कर लोगों को अपने भाव में भावित कर रहे थे, अपने तरफ आकर्षित कर रहे थे। यही भगवान का महादान। और अपने धाम में, अपने नगर में वे स्वच्छंद विहार कर रहे हैं। ततः पौराण पृच्छमान धनुषास्थानमाच्युत तस्मिन् प्रविष्टो ददृशे धनुरेन्द्रमिवाद्भुतम्। कंस एक धनुष यज्ञ किया था। धनुष यज्ञ का अर्थ है धनुष की पूजा। कंस के लिए यह बात बताई गई थी, शिव जी ने उसे धनुष दिया था और कहा था कि इसकी पूजा करो, तो पूजा करता था। और यह भी बताया गया था कंस को कि जिस दिन धनुष टूट जाएगा तो समझना कि अब तुम मरोगे।